माता मरियम के उद्ग्रहण का त्यौहार हम मना रहे हैं। इस अवसर पर हमें कलीसिया याद दिलाती है कि माता मरियम एक छोटी सी बालिका थी, एक गरीब परिवार की लड़की थी जिसको लोग नहीं जानते थे। जब हम संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 को पढ़ते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि माता मरियम एक गरीब परिवार की छोटी सी लड़की थी। लेकिन जब हम प्रकाशन ग्रंथ 12 को पढ़ते हैं, तब मालूम पड़ता है कि माता मरियम एक महिमा से विभूषित महिला है, स्वर्ग में महिमा से विभूषित महिला है। आज के प्रवेश भजन में, मिसा की शुरुआत में हमने सुना, आसमान में महान चिन्ह दीख पड़ा, सूर्य से विभूषित एक महिला जिसके पावों तले चंद्रमा था और सिर पर 12 तारों का मुकुट, यानी उनके पैरों के नीचे चंद्रमा है, यानी चंद्रमा पर खड़ी है और सूर्य से विभूषित महिला है और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट। कितनी महिमामय व्यक्ति है। पूरे बाइबल में किसी दूसरी महिला के बारे में इतनी महिमामय बातें नहीं होती है। यानी एक छोटी सी गरीब परिवार की लड़की से लेकर उस महिमामय स्थान तक पहुंचना, यही माता मरियम की बुलाहट थी। और इसी को हम एक क्रांति कह सकते हैं, क्रांति। हम जानते हैं दुनिया में कई बार क्रांति होती है। क्रांति में क्या होता है? क्रांति का लक्ष्य होता है बदलाव, समाज में बदलाव लाना। आज के सुसमाचार में भी इसी क्रांति की बात होती है। जब गैब्रियल दूत मरियम के पास आकर संदेश देने लगते हैं, माता मरियम विनम्रता के साथ कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। उसके बाद एक महिमामय स्त्री के रूप में नहीं बल्कि एक सेविका के रूप में निकलती है। पहाड़ी प्रदेश में वे चली जाती है और एलिजाबेथ के घर पे प्रवेश करते हुए एलिजाबेथ का अभिवादन करती है। और जब एलिजाबेथ की अभिवादन करती है तो एलिजाबेथ के कोख में, पेट में बच्चा उछल पड़ता है मरियम के अभिवादन का की आवाज सुनकर, और दोनों के बीच बातें होती है। तब माता मरियम गा उठती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद बनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। अब तक वो दीन दासी थी, अब तक एक गरीब लड़की थी, लेकिन माता मरियम को यह ज्ञात होता है जब ईश्वर का अनुभव होता है तो वह धन्य बनती है, धन्य बनती है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किया है। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यह न केवल माता मरियम का अनुभव है, लेकिन हर एक व्यक्ति का अनुभव है, हर एक मनुष्य का अनुभव है। पीढ़ी दर पीढ़ी ईश्वर की कृपा लोगों पर बनी रहती है। ये नहीं सोचना कि उस पीढ़ी में वो खत्म हो गई, नहीं, हमारी पीढ़ी में भी, हमारे समय में भी ईश्वर की कृपा का हम अनुभव कर सकते हैं। उसने अपने बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया और शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया। यह क्रांति है, जिस क्रांति के जरिए ईश्वर शक्तिशालियों को गिरा देते हैं और दीनों को महान बना देते हैं। और उसने दरिद्रों को संपन्न किया, धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। हम जानते हैं आज जो धनी होते हैं एक पीढ़ी के बाद वे गरीब बनते हैं, आज जो गरीब होते हैं एक पीढ़ी के बाद वे ही धनी बनते हैं। किसी भी जगह पर जाकर देखें, बाप और बेटा और ज़्यादा से ज़्यादा पोता तक धनी रह सकता है, उसके बाद वाला गरीब रहेगा, और उसके बाद तीन पीढ़ी के बाद वो फिर से उसके परिवार में अमीर बनेंगे। तो यही होता है दुनिया में, किसी भी जगह पर चार पीढ़ी को आप नहीं देखेंगे जो धनी बनते रहते हैं। चार पीढ़ी धनी नहीं है, एक के बाद एक। अगर पिता कमाएगा बेटा बर्बाद करेगा, अगर बेटा बर्बाद नहीं करेगा तो पोता तो जरूर करेगा। तो चार पीढ़ी तक धनी बने रहना असंभव सा है, असंभव सा है, लेकिन हम जानते हैं ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। लेकिन साधारण तरीके से हम देखते हैं तो चार पीढ़ी तक कोई भी धनी नहीं रहते। तो इस प्रकार हमारे प्रभु यीशु का अनुभव जो होता है वो क्रांति का अनुभव है, बदलाव आता है, बदलाव। हम ये देखते हैं शाऊल के जीवन में जो अचानक ईश्वर का जब अनुभव होता है वो पौलुस बनता है, पूरा बदलाव आता है उसके जीवन में। सिमोन को ईश्वर पेत्रुस बना देते हैं, सिमोन डरपोक है, लेकिन पेत्रुस निडर होकर निर्भीकता से प्रभु का वचन सुनाता है। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 4 में सामारी स्त्री को हम देखते हैं, पापिनी है वो, लेकिन अब से वो पापिनी नहीं है क्योंकि यीशु से मुलाकात होती है। यौहन लुकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम जक्कयुस से मिलते हैं, जक्कयुस अब तक पापी थे लेकिन अब से वो पापी नहीं रहेगा, उसके परिवार में मुक्ति आ गई है। लुकस के सुसमाचार के अध्याय 16 में हमें प्रभु यीशु अमीर और लाजरस का दृष्टांत सुनाते हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं किस प्रकार क्रांति आती है। अमीर था यहाँ पे, लेकिन स्वर्ग में वो प्यासा रहता है, नरक में वो प्यासा रहता है। लेकिन लाजरस जो बीमार था, कंगाल था, वो स्वर्ग में पहुँच जाता है, उसे सारी खुशी मिल जाती है। ईश्वर का अनुभव क्रांति का अनुभव है। अगर मैं और आप भी ईश्वर का अनुभव करेंगे तो उसमें क्रांति आएगी, हमारा जीवन बदल जाएगा। क्रांति का लक्ष्य है बदलाव। प्रभु यीशु से जिसकी भी मुलाकात होती है उसके जीवन में क्रांति अवश्य आएगी, क्रांति अवश्य आएगी, बदलाव आएगा। अगर बदलाव नहीं आता है तो उसने कभी ईश्वर से मुलाकात नहीं की है, उसने कभी यीशु का अनुभव नहीं किया है, इसलिए बदलाव नहीं आता। ऐसे बाहर से दिखाते होंगे कि मैंने यीशु को स्वीकार कर लिया, नहीं। अगर किसी का भी यीशु से मिलन होता है, यीशु से मुलाकात होती है, तो ज़रूर उसके जीवन में बदलाव आता है। अगर नहीं आता है इसका मतलब उसकी मुलाकात ही हुई नहीं, उसने यीशु से मिला नहीं। तो आइए भाई और बहनों, जिस प्रकार माता मरियम ने यीशु का अनुभव किया, ईश्वर का अनुभव किया और उनका जीवन बदल गया, दीन दासी से एक महान महिला के रूप में उनके जीवन में बदलाव आया, इसी प्रकार दरिद्रों को संपन्न बनाने वाले ईश्वर, दीनों को महान बनाने वाले ईश्वर, शक्तिशालियों को उनके आसरों से गिरा देने वाले ईश्वर, घमंडियों को तितर बितर करने वाले ईश्वर, आइए हमारे सामने है। इस मिसा बलिदान में हम उनसे मुलाकात करेंगे। ये समय बदलाव का समय हो, परिवर्तन का समय हो, क्रांति का समय हो।